ஓம் சாந்தி. நிராகாரி பாப்னே साकार ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया. अब ये निराकारी बाप जो कहते हैं, हम कहेंगे कि बाबा आप तो सर्व संबंध से परे हैं, आपको तो नष्ट मोह होने की दरकार नहीं, आपको न खाना है न पीना है न मकान चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम तो संसार में रहते हैं. तो बाबा ने हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने परिवार के साथ रहते अपना जीवन ऊंच बनाया. हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल है. बाबा 60 वर्ष का था और ये पढ़ाई शुरू की, और मम्मा 16 साल की थी, कुमारी थी. तो कुमारी बहाना नहीं दिखा सकती है कि हमने तो संसार देखा नहीं, हम कैसे समर्पण हो जाए. तो इसलिए मम्मा का एग्जाम्पल. कोई बूढ़ा नहीं कह सकता है हम तो 60 वर्ष के हो गए, अभी क्या पढ़ाई करेंगे. तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, परिवार में रह के इतनी उम्र में इतनी सेवा की. तो ब्रह्मा बाबा नंबर वन क्यों गए के उन्होंने आते ही अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं. जो धन था ट्रस्टी को दे दिया और कभी मुरली मिस नहीं की. चाहे बीमार भी होते थे, मुरली की पॉइंट फोन पर देते थे या लिख कर भेजते थे. जब कश्मीर गए थे तो वो मुरली की पॉइंट लिख कर भेजते थे और नाम रखते थे कि फलानी दादी इसको विस्तार से सुनाए. जब मुंबई में ऑपरेशन हुआ तो फोन पर पॉइंट्स देते थे, तो जिसको देते थे वो विस्तार से सुनाते थे. तो ज्ञान में नंबर वन, योग में नंबर वन, धारणा में पूरा ध्यान, पवित्रता की पालना, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान. क्योंकि उनका परिवार साथ में रहा, परंतु हरेक से नष्ट हुआ, अपने अव्यक्त होने के साकार में भी ब्रह्मा बाबा के सामने उनकी बेटी निर्मल शांता, उनके लौकिक बेटे की बहू ब्रिजेंद्रा सब ज्ञान में थे, जसोदा मैया ज्ञान में थे, पर उन्होंने मम्मा को निमित्त बनाया बहनों को देखने के लिए, माताओं को देखने के लिए, उनको यज्ञ की हेड बनाए, लौकिक को नहीं बनाए. तो गृहस्थ व्यवहार में रहते इतना नष्टो मोह था उन्हों का, जो इंटरेक्शन था चाहे निर्मल शांता दादी के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति के साथ सबको समान दृष्टि से देखते थे। अपने लौकिक परिवार को कुछ फेवर नहीं किए और बिना थकावट सेवा अंत तक सेवा करते रहे। 18 जनवरी को दिवस में मुरली नहीं सुना सके, रात को सुनाए, मतलब अंत तक सेवा करते रहे। और अटूट निश्चय शिव बाबा में, अटूट निश्चय, अटूट प्यार, इस कारण नंबर वन ले गए। उनके जीवन में बैलेंस था, लवफुल, न्यारा और प्यारा। प्यार सबको करते थे। आज हम पुरानी बहनों से पूछे कि आपने क्यों सरेंडर किया, कहेंगे बाबा का प्यार मिला, बाबा से शांति मिली, सुख मिला। क्योंकि ज्ञान तो शुरू में नहीं था क्लियर, इतना ही मालूम था हम आत्मा है और शिव बाबा परमात्मा है, बस। शुरू में जब बाबा के सामने कोई आता था 5 मिनट में ज्ञान दे देते थे, पर दृष्टि से, उनकी दृष्टि से इतना लोगों को प्यार, सुख, शांति मिलती थी, जो दुखी आत्माएं उनके सामने आती थी आधे घंटे में कहेंगे मैं सुखी आत्मा हूं। टिकन दादी जो बेंगलोर देखती थी कर्नाटक में, वो अपना अनुभव सुनाती है। उसका पति और बाप कुछ थोड़े समय के अंतर में ही शरीर छोड़ा था, तो जब सत्संग शुरू हुआ वो गई। बाबा ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं दुखी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने समझाया तुम आत्मा हो, परमात्मा ये है निराकार, उसको याद करो, दृष्टि दी। आधे घंटे के बाद उनको पूछा कौन हो, मैं सुखी आत्मा हूँ। तो सबको बाबा का प्यार मिला, जिस कारण सरेंडर हो गए। दूसरा बैलेंस उन्हों में था, एक तरफ नम्रता, दूसरे तरफ रूहानी नशा। बाबा जब भी आते थे, सेंटरों पर जाते थे, उन दिनों में तो ट्रेन से मुसाफरी करते थे, बाबा कभी विमान में नहीं चढ़ा। मम्मा फिर भी एक बारी विमान में गई, तो स्टेशन पर कहे भीड़ नहीं हो ब्राह्मणों के, मैं गुप्त हूँ, गुप्त रीते आऊंगा, क्लास में मिलूंगा, तो किसी को स्टेशन पर नहीं आना है, न छोड़ने न लेने। और फूल हार तोड़ा ब्राह्मणों के लिए नहीं, देवताओं के लिए। और बच्चों को पांव पड़ने नहीं, भक्ति में तो क्या करते हैं, पांव पड़ते हैं, पांव छूते हैं, साष्टांग धन व्रत प्रणाम करते हैं। मामा किसी को कुछ करने नहीं दिया, खुद ही नमस्ते करते थे बच्चों को, मालेकम सलाम, कितनी नम्रता। मुसाफरी भी करते थे पांडव भवन में, उन दिनों में एक विकार नहीं थे मामा के दिनों में। हम सभी बैलगाड़ी में सामान रखकर पैदल आते थे और पैदल जाते थे बस स्टॉप तक। तो कोई भपका नहीं, गुप्त, पर नशा रहता था कि मैं बाबा का सिकिलधा बच्चा हूं, कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। फिर उन्होंने बालक और मालिक का बैलेंस था। मालिक मन के फैसला देता था, बालक मन के राय पूछता था, क्योंकि उन दिनों में जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई आदि पढ़े लिखे भाई थे, उनके राय भी लेते थे, तो निर्णय खुद करते थे। क्योंकि रमेश भाई ने राय दी कि भाई ट्रस्ट शुरू करो, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा ने कहा हम गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं करेंगे, हम पांडव गवर्नमेंट है, कौरव गवर्नमेंट के अंडर क्यों रजिस्टर करें। परंतु टैक्स के लाभ के लिए रमेश भाई ने सुझाव दिया हम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट शुरू करें। तो रमेश भाई के सुझाव को बाबा ने मंजूर किया और बाबा के सामने ही बनाया था। फिर बैलेंस, उदारता और इकोनॉमी। बाबा अभी भी मुरली में कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। और जब बेगरी पार्ट था तो दादियां कहाँ कहाँ पैदल जाती थी और ज्ञान देती थी। पर जब भी बाबा के बच्चे आते हैं, चाहे कोई भी आता है, कितना भी बॉक्स में कभी डालता है नहीं डालता है, परंतु बाबा के घर से सौगात जरूर मिलती है। उदारता, बाबा भी देखता था, प्यार भी था। कभी मजदूर के पास गरम कपड़े नहीं होते थे, फौरन बाबा लच्छू दादी को कहते थे कि बच्ची इनको गरम दो। और अभी तक लेबरर्स को हर साल एक ब्लैंकेट मिलता है। और इकोनॉमी के भी बाबा उतार थे, क्योंकि उन दिनों में फल सारा दिल्ली बॉम्बे से आता था, बड़े शहरों से। आबू में तो कुछ फल बनता नहीं, तो जब फल आता था बाबा चेक करता था, पूछता था कितनी प्राइस दी, तो बाबा को मालूम होता था कितनी प्राइस में क्या होता है। तो बाबा फौरन कहता था आप फंस गई हो, ठीक माल नहीं लाया, ज्यादा पैसा दिया, इकोनॉमी। रॉयल्टी और सादगी का बैलेंस अभी भी हम देखते हैं। ब्रह्मा कुमारियां सफेद साड़ी पहनती है पर इतनी साफ होती है, प्रेस की हुई, और खाना पीना बोल चाल सब बाबा रॉयल्टी सिखाए। बड़े आवाज से नहीं बोलना है, खाते समय शांत रहना है, चलते फिरते नहीं खाना है। दादी जानकी जब ट्रेवल करती थी तो कई लोग पूछते थे, खास एरोप्लेन में, कि दादी तुम कपड़े कहाँ धुलवाती है, इतने साफ है। तो दादी कहती है मैं पेरिस में धुलवाती हूँ। और दादी भी हमेशा कहती थी सफेद कपड़े जेब खाली है। तो सिंप्लिसिटी, परंतु रॉयल बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता जब भी बाबा मिलते थे ना तो ज्ञान की चर्चा करते थे, हालचाल पूछते थे, पर रमणीक भी थे। प्रकाशमणि दादी बंबई में थी शुरू में, 64 में आई ना, तो इतनी सेवा नहीं थी। तो मामा ने मरी हुई मक्खी एनवलप में बंबई भेजी कि तुम बैठ बैठ मक्खियां मारती हो क्या, और हम भी कभी पहली अप्रैल यहाँ विदेश से फरवरी मार्च आते थे, अप्रैल में जाते थे। तो एक बार मैं 1 अप्रैल जा रही थी पांडव भवन से, लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई कि बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकौड़े भेजे, और पकौड़े गरम गरम थे परंतु अंदर थे मूंगफली के छिलके, उसके ऊपर बेसन चढ़ा के तल के ले आई। मतलब अप्रैल फूल भी करते थे। फिर बाबा का जिम्मेवारी और निमित्त का बैलेंस, कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी बाबा के ऊपर भी। उस समय 125 के करीब सेंटर थे, सब बच्चे पत्र लिखते थे, उनका जवाब देना, और कई माताओं को अत्याचार होता था, उनको सकास देना, परंतु अपने को निमित्त समझते थे कि शिव बाबा करावनहार है, मैं करणहार हूं। उसी तरह दादी प्रकाशमणि भी, दादी प्रकाशमणि के ऊपर तो और बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि दादी के समय तो 120 देशों में सेंटर खुल गए थे, और सबके समाचार बीच बीच में आते रहते थे, जिसको जिसको जो तकलीफ होती थी लिखते रहते थे। पर दादी को देखा तो सदैव हर्षित, चाहे मॉर्निंग में 6 बजे देखो, चाहे रात को 10 बजे, लाइट और सोने जाती थी ना दादी, 2 मिनट में नींद आ जाती थी। हम दादी को पूछते थे, दादी आप इतनी लाइट कैसे हैं? आप पापा करावनहार है ना, मैं तो करनहार हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, मुझे क्या चिंता। तो बाबा एक तरफ केयरफुल भी रहते थे तो निश्चिंत भी रहते थे, बेफिकर बादशाह, पर ऊना रहता था क्योंकि उन दिनों में हम लोग फोन भी इतना यूज नहीं करते थे 60s में। तो यदि कोई बहने अकेली जाती थी, ट्रेवल करती थी यहाँ से अपने शहर तक, तो बाबा कहते थे जाकर फौरन टेलीग्राम भेजना कि सेफली पहुँच गई हूँ। होना रहता था जब तक पहुँच जाए। फिर ब्रह्मा बाबा में बेहद की दृष्टि थी, सब मेरे बच्चे, तो चाहे मजदूर है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कुत्ता है, चाहे चिड़िया, सब बच्चे। गर्मी के दिनों में यहाँ झोपड़ी में आकर बैठते थे, उनका टाइम तो फिक्स होता था टाइम टेबल। तो एक चिड़िया आती थी तो बाबा लच्छू दादी को कहते थे, बच्ची इस बच्ची को टोली दो। तो लच्छू दादी भी बच्ची हुई और वो चिड़िया भी बच्ची हुई। और मजदूरों को भी गरम कपड़ा सप्लाई करते थे। बैलेंस था उनके पास लौकिक और अलौकिक। लौकिक को भी अलौकिक बना दिया तो नष्ट मुहा हो गया, मेरा कुछ नहीं, सब शिव बाबा के। अर्थात हमारे सब भाई भाई बहन, तो भाई भाई की दृष्टि पक्की। और अभी तक यही चलता है। आज भारत में 125 देश से लोग आते हैं, अलग कल्चर, अलग भाषा, अलग कलर, पर सब भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, सब मधुबन को अपना घर समझते हैं, सबको यहाँ से प्यार की पालना मिलती है। बैलेंस ऑफ योगा एंड सेवा, ऐसे नहीं कि सेवा करते करते बाबा की याद भूल जाए या योग करते करते सेवा के प्लान, नहीं, योग करते समय सिर्फ बाबा के याद हो, सेवा करते योग बल हो। तो बाबा निरंतर याद में मस्त थे। और कोई भी बच्चे सामने आते थे, अपना ज्ञान का मनन मंथन करते रहते थे और बाबा सुनाते थे। हम लोग जब जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, 2 बहनें जाते थे साथ में, अकेले कभी नहीं जाते थे। तो बाबा कहेंगे आओ हंसों का जोड़ा। फिर मुरली की पॉइंट्स, मंथन की पॉइंट्स सुनाते थे। तो हमें ये भी बैलेंस रखना है शरीर और आत्मा का, क्योंकि ये शरीर भी मूल्यवान है, तो उसको भी बाबा कहते हैं रात को कम से कम 6 घंटा आराम दो, दिन में हो सके तो करो 1 घंटा आराम, और 3 टाइम खाना। विदेश में कहते हैं क्योंकि उन्हों के पास 3 टाइम खाना पकाने का टाइम नहीं होता है ना, तो उनको कहते हैं कम से कम 1 टाइम पूरा खाना बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, बैलेंस डाइट, ताकि शरीर भी तंदुरुस्त रहे। तो आत्मा का भी उन्नति के लिए ज्ञान और योग जरूर करना है, तो दोनों को देखना है आत्मा और शरीर। तो इसी रीत से हमें देखना है कि हमारा बोल चाल संकल्प सब ब्रह्मा बाबा जैसा हो या मम्मा जैसा हो। आज का टॉपिक तो फॉलो फादर है, पर वैसे हम कहते फॉलो मदर फादर। तो बोलना चलना संकल्प कर्म सब उन जैसा हो, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। और मेन बाबा अटेंशन दिलवाते हैं दे को भूलो, देधारियों को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो, मुझे एक को याद करो। ये बाबा का मेन संदेश है। और कोई भी कर्म बंधन में फंसना नहीं, बंधन कितने प्रकार के हैं, पहले तो देह का बंधन है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होता है, न योग लगा सकते हैं, न ज्ञान एकाग्रता से सुन सकते हैं, न सेवा कर सकते, तो देह का भी बंधन है हो जाता, कि देह तंदुरुस्त हो तो सब कुछ हो सके। देहभान का बंधन, पुराने संस्कार स्वभाव का, मित्र संबंधियों का बंधन, स्पेशली जब हम ज्ञान शुरू करते हैं तो वो बंधन डालते हैं, ये क्या नई बातें शुरू कर दी, खाना नहीं पीना नहीं जाना नहीं आना नहीं, किसी की शादी में नहीं जाना है, मूवी में नहीं जाना है, परिवार के संबंध में कुछ फंक्शन है उसमें नहीं जाना है, तो उनका बंधन हो जाता है। साधन और वैभव का बंधन हो जाता है, हम आदती हो जाते हैं ना कुछ कुछ साधनों के, स्पेशली मोबाइल फोन कार या जो भी वाहन है, अपना मोटर बाइक है, साइकिल है, जो भी है, तो क्या होता है कि यहाँ बैंक खाली पड़ा है ना, किसके लिए? तो साधन का बंधन हो जाता है, पुराने स्वभाव संस्कार का, आदतों का बंधन। कहेंगे आपको सवेरे उठने की आदत नहीं, आप रात को कहो तो हम 1 बजे तक जागे, पर आपको 4 बजे उठो मुश्किल लगता है, आदत नहीं। स्वभाव संस्कार का भी, गुस्सा करने की आदत है, बड़े आवाज से बोलने की आदत है, क्या करें? गुरु का बंधन, नाम किया है, गुरु किया है, भक्ति का बंधन, ये हमारे इष्ट देव ये है, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमको श्राप मिले। साइंस का बंधन, बुद्धिमान होते हैं न, कहते हम देखे तो माने, भगवान को देखेंगे तो मानेंगे, आत्मा को देखेंगे तो मानेंगे, तो ये साइंस का भी बंधन हो जाता है। हद का, मैं मेरा, नाम मान शान की चाहना, ये भी बंधन हो जाता है। तो सर्व बंधनों से फ्री रहना है तब हम उड़ सकेंगे, क्योंकि उड़ती कला चाहिए। शुरू में बाबा कहते थे चींटी जैसे चाल ना हो, दौड़ो, फिर कहा जंप लगाओ, अभी बाबा कहते हैं उड़ती कला हो। पास्ट को फुल स्टॉप लगाना है, तब न्यारे बन सकेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाना है, शरीर, कर्म, व्यक्ति, वैभव, कोई भी अपने तरफ आकर्षित न करे। हिसाब किताब से मुक्त रहना है, सेवा में स्वार्थ भाव ना हो, नाम मान शान का इच्छा ना हो, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। तो सदा बाबा को साथी बनाना है और साक्षी दृष्टा में अवस्था में रहना है। क्योंकि साक्षी बनकर देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नहीं तो क्वेश्चन उठेंगे, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये हो ये ना हो आदि आदि। पर ड्रामा का बहुत हमें मदद मिलती है साक्षी बनकर देखने से, अवस्था एक रस रहती है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते और गामा में जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी। पास जो हुआ अच्छा हुआ, प्रेजेंट जो हो रहा है अच्छा है, और फ्यूचर जो होगा और भी अच्छा। तो कल्याणकारी ड्रामा है। तो बाबा का शिव बाबा से अति प्यार था। और हमें भी बाप समान शिव बाबा के प्यार में लीन हो जाना है। बाबा कभी नाराज नहीं होते थे, गुस्सा भी नहीं आता था, क्योंकि ड्रामा को देखते रहते थे, प्यार से समझाते थे और सबको प्यार से चलाते थे। कर्म भोग को कर्म योग में पलटना है, क्योंकि बीमारी आएंगी, परिस्थिति ऊपर नीचे होंगी, धन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आजकल संसार में देखो कोरोना के कारण कईयों का धंधा बंद हो गया, कईयों की नौकरी बंद हो गई, पर बाबा के बच्चों को दाल रोटी तो मिलती रहती है। तो इसलिए कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है। हमने कई दादियों को देखा, विशेष प्रकाशमणि दादी, कुछ समय वो बीमार रही पर योग पावरफुल, जब शरीर छोड़ा तो जो भाई बहनों ने उनको देखा का इतनी पावरफुल दृष्टि दी उस समय भी। और कभी चूचा नहीं किया, दर्द है यहाँ दर्द है, नहीं नहीं तो बीमार आदमी क्या कहता है, यहाँ दर्द है, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, कंप्लेन करते रहते हैं। पर दादियों ने कभी कंप्लेन नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने कभी कंप्लेन नहीं की। खांसी होती थी, कफ निकलता था, मेरी सखी है खांसी, और कोई इच्छा नहीं, वैराग्य, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य। क्योंकि आजकल माया का कितना शोर पंप है, खास मोबाइल फोन, टेलीविजन, हर एक समझता है टेलीविजन का बड़ा स्क्रीन हो, कलर टीवी हो, मोबाइल भी 4G 5G होना चाहिए, परंतु जो सहज मिला वो ठीक है, बाकी इच्छा रखकर उसका चिंतन नहीं करना कि कैसे कैसे पैसा जमा करे, कैसे वो खरीदे आदि आदि। तो जैसे सतयुग के देवताओं का गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। और सारा दिन मनन मंथन चलता रहे। आजकल बाबा सीढ़ी का चित्र और आज कल्पवृक्ष का चित्र की भी महिमा करते थे कि ये दो चित्र बहुत अच्छे हैं, और कोई कोई गीत ऐसे अच्छे हैं जो सबको रखना चाहिए। चित्र भी घर में हो, कोई भी आवे उनको समझाओ। तो ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतन करते रहना है। और यहां हमारी मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पर अधिकार हो। ऐसे में बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। तो ऐसे नहीं कि व्यर्थ संकल्प चलते रहे। व्यर्थ संकल्प न हो, कर्म इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में हो, मालिक बन यहां। जब मन सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रिय पर अधिकार होगा, तब हम वहां राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए देखना है कैसे नहीं मन को लालच सोए खाने पीने घूमने फिरने की। नहीं, हम सबसे परे रहें। ब्रह्मा बाबा को कब हम बुलाते थे कि बाबा यहाँ हो, तो बाबा कहते थे क्या है बंबई में, बंदर है ना, तो बंदरों को क्या देखना, कांटों का जंगल है ना। तो घूमने फिरने का शौक नहीं था। बाकी हाँ, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कभी कभी मुझे इच्छा होती है कि छोटे छोटे गांव में बड़ी दादियों को भेजे, वो खुश हो जाए। तो सेवा के अर्थ, दिसंबर जनवरी में क्या होता था मधुबन में, खास कोई आते नहीं थे। पहली बारी 18 जनवरी को इतना बड़ा क्राउड हुआ। बाकी तो दिसंबर जनवरी में ठंडी में कोई नहीं आते थे। तो हम लोग बम्बई दिल्ली में बाबा को बुलाते थे, बाबा आओ, अपने शरीर की चेकिंग भी करा के जाओ, बच्चों को रिफ्रेश भी करके जाओ। तो इसलिए बाबा मम्मा ने बम्बई में काफी सेवा की, जिस कारण बम्बई दिल्ली में मेहनत लगी। बम्बई को बाबा कहते थे मायावी नगरी, मेहनत लगी। और मेहनत के बाद अभी अच्छी सेवा हो गई है। लोगों ने, सेंटर वालों ने प्रदर्शनी कर करके 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 सेंटर खोलते गए, और अभी तो अच्छी संख्या में दिल्ली में भी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि बाबा कहते थे दिल्ली गवर्नमेंट की राजधानी है, वहाँ गवर्नमेंट की भी सर्विस करनी है। तो काफ़ी सर्विस हो गई है गवर्नमेंट की, और बम्बई में भी VIP एक्टर्स वगैरह की अच्छी अच्छी सर्विस हो रही है। तो बाबा को बहुत सेवा का उमंग उत्साह था, मुरलियों में भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मंदिरों में जाओ, स्मशान में जाओ, गंगा के तट पर जाओ, ट्रस्टियों को समझाओ। तो सेवा का उमंग था और मुरली द्वारा डायरेक्शन देते रहते थे। ओम शांति।
Mm-hmm.